अध्याय 52। मनुष्य के साथ परमेश्वर के संबंध को साफ रखिए। मस्तिष्क की नाड़ियां ही जो समस्त देह से संपर्क रखती हैं एकमात्र माध्यम हैं जिनके द्वारा स्वर्ग मानव से संसर्ग रखता है और उसके आंतरिकतम जीवन को प्रभावित करता है। स्नायु मंडल के विद्युत प्रवाह के परिभ्रमण को जो भी पदार्थ अव्यवस्थित करता है मार्मिक शक्तियों के बल व जोर को कम करता है और परिणाम ये होता है कि मस्तिष्क की चेतनता निर्जीव हो जाती है। किसी प्रकार की भी असंयमित ज्ञान इंद्रियों को सुन कर देती हैं और मस्तिष्क की नाड़ी शक्ति को इतना कमजोर कर देती है कि आत्मिक विषयों की सराहना नहीं की जाती अपितु उन्हें आम स्तर पर रखा जाता है। द्विभाग को उच्च शक्तियां जो उच्च अभिप्रायों के लिए निर्माण की गई हैं अधर्म अभिलाषाओं को दास्ता में पड़ जाती हैं। यदि हमारी शारीरिक आदतें यथोचित नहीं हैं तो हमारी मानसिक तथा नैतिक शक्तियां मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि शारीरिक तथा नैतिक शक्तियों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब मानव परिवार संकट व दुख में फंस जाता है तो शैतान देखकर बहुत खुश होता है। वह जानता है जिन लोगों की आदतें गलत और देह अस्वस्थ हैं वे स्वस्थ लोगों की भांति उत्साह धीरज तथा पवित्रता में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। रोगग्रस्त शरीर मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। हम मन ही से परमेश्वर की उपासना करते हैं, सिर देह की राजधानी है। शैतान के विनाश के काम में जिसे वह उत्पन्न करता है जीत होती है। जब वह मानव परिवार को बुरी आदतों में फंसाता है जिनसे वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को भी नष्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार वह परमेश्वर को यथोचित सेवा से वंचित रखता है। शैतान निरंतर चौकन्ना है कि मनुष्य जाति को पूर्णतः अपनी अधीनता में लावे। वह मनुष्य पर सबसे जबरदस्त कब्जा क्षुधा द्वारा करता है और क्षुधा को वह हर संभावित तरीके से उत्तेजित करता है। शैतान की सबसे घातक योजना। शैतान ने अपने दूतों को जमा किया कि मानव परिवार को हानि पहुंचाने के हेतु कोई योजना रचे। योजना पर योजना पेश की गई, जबकि शैतान के ख्याल में एक योजना आई। वह उन पदार्थों को लेकर जिन्हें परमेश्वर ने भोजन के रूप में दिया है, जैसे अंगूर और गेहूं, मनुष्य की शारीरिक मानसिक तथा नैतिक शक्तियों को बिगाड़ने के लिए विष में बदल डालेगा और इस प्रकार चेतन इंद्रियों को ऐसे काबू में कर ले कि शैतान का पूरा सिक्का आत्मा पर जम जाए। शराब के प्रभावधीन मनुष्य हर प्रकार के अपराध कर डालेंगे। भ्रष्ट क्षुधा के द्वारा जगत भ्रष्ट हो जाएगा। लोगों को मदिरा पिलाकर शैतान उन्हें तराजू के पलड़े में अत्यंत भारी जचवाएगा। शैतान दुनिया को शराब, तमाकू, चाय और कॉफी के उपयोग के द्वारा गुलामी में ला रहा है। परमेश्वर दत्त बुद्धि जिसे स्वच्छ रहना चाहिए निद्रात्मक औषधियों के प्रयोग द्वारा भ्रष्ट हो जाती है। मस्तिष्क सही निर्णय देने योग्य नहीं रहता। शत्रु का नियंत्रण हो चुका है। मानव ने अपना विवेक पागल करने वाली वस्तु के लिए बेच डाला है। उसे अब सत्य का कोई ज्ञान नहीं रहा है। हमारे सृजनहार ने मानव के ऊपर उदार हृदय से अपनी उदारताएं बरसाई हैं। यदि परमेश्वर की ये आशीषें बुद्धिमत्ता तथा संयमता से उपयोग की जाती तो पृथ्वी पर से दरिद्रता, बीमारी तथा दुर्भाग्य प्रायः दूर हो जाती। परंतु खेद की बात है कि हम चारों ओर मानव के दुराचार के कारण परमेश्वर की देनों को शाप में बदले हुए देखते हैं। परमेश्वर की अनमोल देनों को भ्रष्ट करने तथा दुरुपयोग करने का कोई वर्ग इतना अधिक दोषी नहीं है जितना वह वर्ग है जो धरती की पैदावार को नशीली शराब बनाने में इस्तेमाल करता है। पौष्टिक अनाज स्वास्थ्यकर स्वादिष्ट फल उत्तेजक पेयों में परिवर्तन किए जाते हैं जो ज्ञान इंद्रियों को भ्रष्ट और मस्तिष्क को पागल कर देते हैं। उन विषों के उपयोग के परिणाम स्वरूप हजारों परिवार जीवन के सुख तथा आवश्यकीय वस्तुओं से वंचित रहते हैं। हिंसात्मक कार्यों तथा अपराधों की संख्या बढ़ जाती है और रोग तथा मृत्यु लाखों पीड़ितों को शराबी की कब्र में झोंक देती है। नशीली मदिरा। बाइबल में कहीं भी नशीली शराब की आज्ञा नहीं है। जो दाख मधु मसीह ने काना के विवाह के समय जल से बनाया था वह अंगूर का रस दाख रस था। धर्म पुस्तक कहता है किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है। यशायाह 65:8। दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं।
कौन कहता है हाय हाय? कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। मानव के हाथ से नशीली पेय के उत्पीड़ित के अधपतन तथा दासत्व का ऐसा स्पष्ट चित्र कभी नहीं खींचा गया। दासत्व में तथा तुच्छ अवस्था में पड़े हुए, यहां तक कि जब उसे अपने संकट का ज्ञान भी हो जाए, तो उसमें उस फंदे से छूटने की कोई शक्ति नहीं है और कहता है, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। वाइन, बियर तथा सीडर वास्तव में इतनी ही नशीली हैं जितना तेज मदिरा। इन पेयों का उपयोग तेज मदिरा के लिए उत्तेजित करता है। यो मद्यपान की आदत स्थापन हो जाती है। संयमता के साथ मद्यपान करना एक ऐसा स्कूल है जिसमें मनुष्य शराबी के जीवन के लिए शिक्षित किए जाते हैं। फिर भी इन हल्के उत्तेजकों का कार्य ऐसा धोखे का है कि उत्पीड़ित अपने खतरे का पता करने से पहले मद्यपान के राजमार्ग में दाखिल हो चुकता है। शराबी के ऊपर नशीली मदिरा के बुरे प्रभाव को दिखलाने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इंसानियत के बर्बाद शुदा पुर्जे, अंधे और पागल हर कहीं पाए जाते हैं। जिन आत्माओं के लिए मसीह ने प्राण दिए, जिन पर दूत विलाप करते हैं, ये हमारी गर्वीली सभ्यता पर एक कलंक हैं। ये हर देश में शर्मधिकार तथा जोखिम का कारण है। मदिरा मनुष्य को दास बनाती है। जब नशीली मदिरा के लिए क्षुधा की तृप्ति की जाती है, तो मानव स्वेच्छा से अपने होठों में वह घूंट डालता है जो उसको पशु के दर्जे से नीचे गिरा देता है, जो परमेश्वर की छवि पर सृजा गया था। विवेक अपाहिज हो जाता है, बुद्धि सुन्न पड़ जाती है, पाश्विक इच्छा उत्तेजित हो जाती है, फिर नीच श्रेणी के अपराध उपस्थित होते हैं। मदिरा के प्रभावधीन वे ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जिनके करने से यदि वे इस पागल करने वाले द्रव्य को न चखते तो भय के मारे पीछे हटते। जब वे इस तरल विष के प्रभावधीन हैं, तो उस समय वे शैतान के कब्जे में हैं। वह उन पर शासन जमाता है और वे उसके साथ सहयोग रखते हैं। वह इसी तरह काम करता है जब शैतान लोगों को उनकी आत्मा को शराब के लिए बेच डालने के लिए बहकाता है। वह देह, मस्तिष्क और आत्मा पर अधिकार जमाता है। अब इसके बाद मनुष्य नहीं किंतु शैतान सारी कार्यवाही करता है, और शैतान का अत्याचार प्रत्यक्ष दिखाता है जब शराबी अपनी पत्नी को, जिसे उसने जीवन भर लाड़ प्यार करने का वायदा किया था, मारने के लिए हाथ उठाता है। शराबी की करतूतें शैतान की हिंसात्मक कार्यवाही का विवरण है। जो लोग मदिरापान करते हैं, वे अपने को शैतान के गुलाम बनाते हैं। शैतान उनको प्रलोभन में डालता है। जो रेलवे में, जहाजों में जिम्मेदारी के पदों पर हैं, जो उन किश्तियों अथवा कारों के जिम्मेदार हैं, खेल तमाशे में जाने वाली भीड़ से लदी हैं और जाकर भ्रष्ट क्षुधा की तृप्ति करते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर और उसकी व्यवस्था को भूल जाते हैं, देख नहीं सकते कि वे किधर जा रहे हैं। गलत इशारे दिए जाते हैं और कारें एक दूसरी से टक्कर खाती हैं। तब कंपकपी व भय छा जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं तथा मृत्यु हो जाती है। यह दशा और जोर शोर से बढ़ती जाएगी। शराबी की भ्रष्ट प्रवृत्तियां उसकी संतान में पहुंच जाती हैं और उनके द्वारा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती हैं। तंबाकू एक धीमा विष। तंबाकू धीमा, धोखा देह तथापि अत्यंत घातक विष है। जिस शक्ल में भी उसका प्रयोग किया जाए,
उसका शरीर रचना पर बुरा असर पड़ता है। वह और भी खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे होता है और प्रारंभ में मुश्किल से पता लगता है। प्रथम वह नाड़ियों को उत्तेजित करता है, फिर पंगु बना देता है। इससे मस्तिष्क निर्बल तथा धूमिल हो जाता है। अक्सर वह नाड़ियों पर नशीली मदिरा से भी शक्तिशाली प्रभाव डालता है। यह अति धूर्त है और उसके प्रभाव को शरीर रचना से निकालना कठिन है। उसका प्रयोग तेज मदिरा की ओर उत्तेजना करता है और अनेक परिस्थितियों में मदिरापान की आदत की बुनियाद डालता है। तंबाकू का प्रयोग कष्टदायक, महंगा तथा गंदा है और पीने वाले को अशुद्ध करता तथा दूसरों को अप्रसन्न करने वाला है। बालकों तथा युवकों को तंबाकू का प्रयोग अकथनीय हानि पहुंचा रहा है। लड़के तंबाकू का इस्तेमाल शुरू के सालों से करने लगते हैं। जब आदत उस तरह बन जाती है, जिस समय देह व मस्तिष्क विशेषकर उसके प्रभाव के ग्रहणशील होते हैं, तो वह शारीरिक बल को क्षति पहुंचाता, देह को ठिंगना, मस्तिष्क को अचेत करता तथा आचरण को भ्रष्ट करता है। तंबाकू के लिए प्रकृति में कोई स्वाभाविक शुद्धा नहीं होती। जब तक पैतृक रूप में न प्राप्त हुआ हो, चाय तथा कॉफी के सेवन से तंबाकू की इच्छा होती है। गरम मसाले के साथ तैयार किया हुआ भोजन आमाशय को प्रकुपित करता, रक्त अशुद्ध करता है और तेज उत्तेजकों के लिए राह तैयार करता है। अत्यंत मसालेदार मांसाहार और चाय व कॉफी, जिन्हें कुछ माताएं अपने बालकों को खाने पीने के लिए प्रोत्साहन करती हैं, उनके लिए राह तैयार करते हैं कि वे तेज उत्तेजकों जैसे तंबाकू की इच्छा करें। तंबाकू का प्रयोग शुधा को मदिरा के लिए प्रोत्साहन करता है। तंबाकू का धुआं स्त्रियों तथा बालकों के लिए हानिकारक। स्त्रियों तथा बालकों को हुक्के या चुरुक से गंदी की हुई वायु अथवा तंबाकू पीने वाले की गंदी सांस को अपने फेफड़ों में लेने के कारण कष्ट उठाना होता है। जो इस वायुमंडल में रहते हैं, वे सदा बीमार रहेंगे। फेफड़ों और त्वचा के छिद्रों से निकली हुई विषैली तंबाकू की दुर्गंध को सांस लेने से बच्चे की शरीर रचना विष से भर जाती है, जबकि यह बाज बच्चों में धीमे विष की तरह काम करता है और मस्तिष्क, हृदय, यकृत तथा फेफड़ों पर प्रभाव डालता है और वे क्षीण हो जाते तथा क्रमशः मिट जाते हैं। दूसरों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे ऐठन, दौरान, पक्षाघात तथा अचानक मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। तंबाकू के दास के फेफड़ों से हर सांस में जो वायु निकलती है, वह इर्द गिर्द की हवा को विषैली बनाती है। गत पीढ़ियों की अस्वस्थ प्रथाएं आज के बालकों तथा युवकों पर प्रभाव डालती हैं। मानसिक अयोग्यता, शारीरिक निर्बलता, अव्यवस्थित नाड़ियां और अप्राकृतिक इच्छाएं मीरास के रूप में पिता से पुत्र तक पहुंचाई जाती है, और वही आदतें जब बालकों द्वारा जारी रखी जाती हैं तो उनसे बुरे परिणामों की संख्या बढ़ती जाती और चिरस्थायी होती जाती है। चाय और कॉफी से शरीर का पोषण नहीं होता। चाय उत्तेजक के रूप में कार्य करती है और किसी हद तक नशा पैदा करती है। कॉफी का और बहुत अन्य लोकप्रिय पेयों का असर इसी प्रकार का होता है। उसका प्रथम प्रभाव आनंददायक होता है। आमाशय की नाड़ियां उत्तेजित हो जाती हैं। ये मस्तिष्क को भी उत्तेजित करती हैं और यह अपनी बारी में हृदय को ज्यादा काम देने को और समस्त शरीर रचना को अल्पकालिक शक्ति देने को उत्तेजित करता है। थकावट का नाम नहीं रहता। ऐसा मालूम होता है कि बल में वृद्धि हो गई। मस्तिष्क जाग जाता है। कल्पना शक्ति और भी स्पष्ट हो जाती है। इन परिणामों के सबब बहुत से यह सोचने लगते हैं कि चाय या कॉफी से उनको बड़ा फायदा हो रहा है, परंतु यह भूल है। चाय या कॉफी से शरीर का पोषण नहीं होता, उनके पचन होने से पूर्व ही उनका प्रभाव देता है और जो पहले बल व शक्ति समझी जाती थी, वह केवल स्नायविक उत्तेजना ही है। जब उत्तेजक का प्रभाव चला जाता है तो अस्वाभाविक शक्ति भी कम हो जाती है और नतीजा दुर्बलता व कमजोरी होती है। नाड़ी उत्तेजकों के निरंतर प्रयोग के बाद सिरदर्द, जागरण, अनिद्रा, हृदय की धड़कन, अपचन, कपकपी, अनेक खराबियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जीवन शक्तियों को क्षीण कर डालते हैं। थकी मांदी नाड़ियों को विश्राम व शांति की आवश्यकता है, न कि उत्तेजना तथा अत्यधिक काम की। कुछ लोग धर्म से पीछे हट गए हैं और चाय और कॉफी का फिर सेवन करने लगे हैं। औषधियों का उपयोग। विषैली औषधियों के आम इस्तेमाल की आदत अत्यधिक बीमारी और अधिक गंभीर बुराइयों की बुनियाद डाल रही है। जब रोग आक्रमण करता है तो अनेक लोग अपनी अस्वस्थता का कारण ढूंढने का कष्ट नहीं करते। उनकी सारी चिंता यही है कि दर्द तथा कष्ट दूर हो जाए। विषैली औषधियों के प्रयोग से अनेकों अपने लिए जीवन का रोग पाल लेते हैं और बहुत से लोगों के प्राण जाते रहते हैं जो प्राकृतिक ढंग की चिकित्सा से बचाए जा सकते थे। ऐसी बहुत सी तथाकथित औषधियों का विष ऐसी आदत तथा क्षुधा उत्पन्न कर डालता है जिससे आत्मा और देह दोनों को हानि होती है। बहुत सी पेटेंट औषधियां और चिकित्सकों द्वारा तैयार की गई औषधियां भी शराब की, अफीम की लत डालने की बुनियाद डाल रही हैं, जो समाज के लिए एक खतरनाक अभिशाप है।
गोलियों तथा औषधियों द्वारा रोग की चिकित्सा करना एक श्राप है। औषधियों से दूर रहने के लिए शिक्षित कीजिए, उनका प्रयोग बहुत कम कीजिए, अधिकतर सफाई के साधनों पर भरोसा कीजिए, फिर देखिए प्रकृति परमेश्वर के चिकित्सकों स्वच्छ वायु, जल, यथोचित व्यायाम, निर्दोष अंतकरण के अनुकूल हो जाएगी। जो चाय, कॉफी तथा मांसाहार के प्रयोग में हट करते हैं वे औषधियों की जरूरत महसूस करेंगे, परंतु बहुत से लोग औषधि की एक गोली बिना स्वस्थ हो जाते यदि वे केवल स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते। औषधियां तो कभी कभार ही प्रयोग करनी चाहिए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, संसार के लिए एक आदर्श। संप्रदाय के नाते हम जगत में धर्म सुधारक, प्रकाशवाहक, परमेश्वर के लिए विश्वस्त पहरेदार हैं, जिन्हें हर रास्ते की, जहां से शैतान क्षुधा को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने प्रलोभनों को लेकर आ सकता है, रक्षा करनी है। हमारा नमूना तथा प्रभाव सुधार के पक्ष में शक्तिशाली होना चाहिए। हमें इस प्रकार की आदत से, जिससे विवेकमंद तथा प्रलोभन को प्रोत्साहन हो, दूर रहना चाहिए। हमें कोई द्वार नहीं खोलना चाहिए जिससे शैतान को मानव की बुद्धि में प्रवेश करने का मौका मिले, जो परमेश्वर की छवि पर पैदा किया गया है। सबसे उत्तम सुरक्षित बात यही है कि चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम तथा नशीले पेयों को न तो छुआ जाए, न चखा जाए, न हाथ में लिया जाए। शैतान के प्रलोभनों का प्रतिरोध करने एवं क्षुधा में लेश मात्र भी लिप्त होने की परीक्षा का सामना करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से शक्तिशाली की गई इच्छा शक्ति का प्रयोग आज की पीढ़ी के लोगों की कई पीढ़ियों के पहले के लोगों से दुगनी आवश्यकता है। परंतु वर्तमान पीढ़ी में आत्मा नियंत्रण की शक्ति उस समय के लोगों की बनिस्बत कम है। जिन लोगों ने इन उत्तेजित पदार्थों की क्षुधा को स्वीकार किया है, उन्होंने अपनी भ्रष्ट क्षुधाओं और अभिलाषाओं को अपने बालकों तक पहुंचाया है। इसलिए असंयमता का हर शक्ल में प्रतिरोध करने के लिए अधिकतर नैतिक शक्ति की आवश्यकता है। एकमात्र पूर्णतः सुरक्षित मार्ग यह है कि संयम के पक्ष में दृढ़ता से डटे रहें और खतरे की सड़क पर पग न रखें। यदि समस्त बातों में संयम के विषय पर मसीहियों में चेतनता आ जाती तो वे अपने नमूने से, अपनी खाने की मेज से शुरू करके उसकी जो आत्मा नियंत्रण में निर्बल है, जो क्षुधा की इच्छाओं का प्रतिरोध करने में प्रायः निर्बल हैं, मदद कर सकते। यदि हम महसूस कर सकते कि जो आदतें हम इस जीवन में डालते हैं उनका हमारे सार्वकालिक हितों पर असर पड़ता है और कि हमारा सार्वकालिक प्रारब्ध वस्तुतः संयमी आदतों पर निर्भर करता है, तो हम खाने पीने में कड़ाई के साथ संयम को बरतते। अपने नमूने और वैयक्तिक कोशिश से हम बहुत से व्यक्तियों को असंयमता तथा मृत्यु के गड्ढे से बचाने का साधन बन सकते हैं। हमारी बहिनें अपनी मेजों पर स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन रखने से दूसरों के त्राण के भारी काम में बहुत कुछ कर सकती हैं। वे अपना कीमती समय अपने बालकों के स्वाद और क्षुधा को सुशिक्षित करने में, बच्चों की हर बात में संयम की आदत बनाने में तथा दूसरों के हितार्थ, आत्मा त्याग तथा दानशीलता को प्रोत्साहन करने में व्यतीत कर सकती हैं।